कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामाम चरणान्तिके। कल में दामोदर लीला का प्रारंभ किया था, किस प्रकार से समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण यशोदा के पुत्र होकर के आए और किस प्रकार से उन्होंने ऐसे परब्रह्म को जैसा कोई आदि अंत भीतर बाहर ऊपर नीचे नहीं है उस अनलिमिटेड परब्रह्म को अपनी प्रेम रूपी रज्जु से बांध दिया। आज तक किसी ने नहीं बांधा, राम अवतार में नहीं बांधे गए, नृसिंह रूप में नहीं बांधे गए और सब अवतारों में किसी में नहीं बंधे, किंतु आज उस पर ब्रह्म को अपने प्रेम रूपी रज्जु से यशोदा मैया ने बांध दिया। तो उसी का मैं वर्णन कर रहा था, उनको जोगी लोग अपने समाधिस्थ निर्मल मन में भी जो ध्यान में नहीं उनके चरणों को पाते, यशोदा गोपी उस ब्रह्म से भी अधिक तेज दौड़कर और उनको पकड़ लिया। तात्पर्य क्या, भगवान का भक्तों पर प्रेम है और भक्तों का भी भगवान के प्रति प्रेम है, दोनों में ऊंचा प्रेम किसका है? भगवान का भक्तों के प्रति ऊंचा प्रेम नहीं, भक्तों का प्रेम ऊंचा है। नहीं तो बांध नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम है, जैसे वे वशीभूत हो जाए। अभी हम लोग आ रहे तो कीर्तन एक सुन रहे थे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई संसार में ऊंची से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत उस प्रेम को देता है, गोपियों की आराधना करने से वो प्रेम दे देगी गोपियां कि कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। अभी पंडित जी भी गा रहे थे, राधा राधे कहो तो चली आएंगे बिहारी, अपने आप वो चले आएंगे। नाम को सुन करके जो कोई गा रहा है उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। या ऐसी ऊंची प्रेम की सगाई है। तो ये दामोदर लीला श्रीमद् भागवत में दिखलाई गई, जो कहीं नहीं अन्यत्र है। आप ही उनको अपने प्रेम से बांध सकते हैं यदि ऐसा ही भगवान के प्रति निर्मल ऊंचा प्रेम। इसी के लिए हम जगत में आए थे, किंतु ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को, और ओटन लगे कपास, जीवन निर्वाह में पैसे बनाने में लग गए। इसलिए जसोदा मैया जी गोपियों को आदेश दिया, हमारे घर की रस्सी खत्म हो गई, अब तुम लोग अपने अपने घरों से ले आओ। वो अपने अपने घरों से जितनी गायों को बांधने के लिए रस्सियां थी वो लाई और वो जोड़ती गईं, वो बढ़ती गईं, और कृष्ण की कमर जितनी थी उतनी ही रही, अधिक बड़ी नहीं। ये आश्चर्य की बात हुई, दो अंगुल बस कम पड़ी, तीन अंगुल चार अंगुल नहीं, एक अंगुल भी नहीं, जोड़ती जा रही हैं और कमर में दे रही, बस एक बार भी, ऐसा नहीं कि दो बार चार बार लगाया, एक बार भी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात, गोपियां हंस रही हैं, तो उनको बांध नहीं रही रस्सी, दो अंगुल पड़ रही है कम, तीन अंगुल चार अंगुल क्यों नहीं पड़ी। देखो भगवान को बांधने के लिए दो बातें जरूरी है, साधकों का अपनी साधना का परिश्रम पहली बात, पहले साधक को भगवान के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे? प्रहलाद महाराज जी हैं, नारद जी का चरित्र है, मीराबाई को भी इसी में देखो, तुलसीदास जी, सूरदास जी, और विशेष करके हमारे चैतन्य महाप्रभु के जितने परिकर लोग हैं उनका प्रेम, प्रेम में लेना नहीं है ना? प्रेम में केवल देना देना होता है, जिस प्रेम में लेना है वो प्रेम प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। ठाकुर जी की सेवा यदि हम करते हैं उसके बदले में ठाकुर जी से कुछ लेते हैं तो ये क्या हो गया? यदि हम महीना लेकर के ठाकुर जी की पूजा करेंगे तो हमारी पूजा का फल क्या होगा? वो जिसने रुपया दिया हमको महीना दे करके रखा उसका वो फल हो गया। आ रहा है समझ में? इसलिए भगवान की सेवा निष्कपट रूप से, कोई भी आदान प्रदान, केवल देना ही देना है। गोपियों ने अपना कृष्ण को सर्वस्व दिया, कृष्ण से उन्होंने कहा जैसे तुम एक कपड़ा भी दो, अपने घर में खाती पीती थी, कृष्ण का कुछ नहीं लिया, कृष्ण को दिया ही सर्वस्व, जहां कुछ लिया प्रेम नष्ट हो गया, ऐसे समझो। इन हाई क्लास ऑफ लव विल हैव टू गिव, ऑलवेज गिव टू गिव टू गिव, नथिंग टू टेक फ्रॉम कृष्ण। इफ कृष्ण इज टेलिंग दैट ओ आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, देन व्हाट गोपी मे टेल, ओ गिव योर ओ वेरी स्वीट सर्विस, नथिंग एल्स। यदि गोपियां ये कहेंगी ये जैसे हमने सब कुछ संसार में छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं, तुम भी सबको छोड़ करके हमारे चरण में आओ, कर सकते हैं कृष्ण? कर सकते हैं कि नहीं? अपनी मैया को छोड़ देंगे, बाप को छोड़ देंगे, और किसी एक गोपी को छोड़ देंगे, रुक्मिणी सत्यभामा छोड़ सकते हैं? एक संसार का साधारण भी भक्त है उसको भी नहीं छोड़ सकते, और की तो बात क्या है। इसलिए कृष्ण कभी भी किसी एक भक्त को भी छोड़ेंगे तो उसका ऋणी बन जाएंगे, इसलिए गोपियों के जैसा वो करने में समर्थ नहीं है। इसलिए कहा कि मैं तुम्हारा सब समय ऋणी हूं, तुम्हारा ऋण मैं पे नहीं, आई कैनॉट रिपे यू, ओनली टू गोपी ही हैज टोल्ड, नॉट टू प्रहलाद महाराज और एनी वन, ऑल भक्त ही कैन पे समथिंग टू नारद प्रहलाद, सबको दे देंगे किंतु गोपियों को नहीं दे। इसलिए जो सोदा मैया जो दो अंगुल कम पड़ रही, साधन का परिश्रम भक्तों का हो। ध्रुव जी के ऊपर किस लिए प्रसन्न हुए? छह महीना खाया ही नहीं, पहले प्रथम महीने में ध्रुव जी सूखी हुई पत्तियों को चबा करके अपना जीवन निर्वाह किया, दूसरे महीने में छोड़ दिया, पानी की ओर पिया, वो भी 15 दिन के अंदर। तीसरे महीने में पानी भी छोड़ दिया, श्वास लेते थे कभी थोड़े थोड़े देर में, 15 दिन में एक बार श्वास लिया, फिर पानी हवा को भी छोड़ दिया और एकदम समाधिस्थ हो गए, श्वास लेना भी बंद कर दिया, भगवान का आसन डोल गया। ये परिश्रम है, कलयुग में ऐसा परिश्रम संभव नहीं है, इसलिए ये परिश्रम की इतनी जरूरत है नहीं है, जीव लोग ऐसा कर नहीं सकते। तब एक करना है, एकादशी का पालन करना है, जन्माष्टमी रामनवमी का ये सब पालन करना है, और उस दिन खूब जोर से कीर्तन करना है, क्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, बस इसे वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसका भी परिश्रम होना चाहिए, यदि खाने में लग गए तो फिर वो कष्ट तो हुआ नहीं, इसलिए इस रूप में परिश्रम होना चाहिए साधकों को भगवान के लिए। ये वाल्मीकि जी ने कैसी तपस्या की, नारद जी ने कहा तुम अब सब धनुष बाण इत्यादि छोड़ करके लोगों को मारना पीटना लूटना छोड़ दो और राम राम कहते हुए बैठ जाओ, अब यहां से उठना नहीं जब तक नहीं आ जाऊं। तो राम राम तो निकल नहीं रहा, इतने पापी जघन्य थे, इसलिए उन्होंने नारद जी ने कहा जी अच्छा एक बात है, तुमने मारा मारा तो किया है तो मारो मरा 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 ये करो, उल्टा नाम जपने के लिए आधाम ये तो मैं कह सकता हूं, और कहते 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 राम राम ये नाम आ गया उल्टा नाम से भी, और उठे नहीं, शरीर में दिमक लग गया, 60,000 वर्ष तक बैठे रह गए। होगा कलयुग में कोई ऐसा परिश्रम करेगा, ये तो संभव नहीं। तो जैसे भी हो भगवान के लिए यदि कोई परिश्रम साधन करेगा तो भगवान की कृपा हो, पहला साधन का परिश्रम और कृष्ण का की कृपा होनी चाहिए। साधन लाभ करने पर भी यदि कृष्ण की कृपा नहीं हुई तो वो नहीं मिलेंगे, इसलिए दोनों बात जरूरी है, पहला अपने साधन का परिश्रम और दूसरा भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा सर्वत्र है, साधु संग दिया, मंदिर इत्यादि बनाया, साधुओं को सर्वत्र भेजते हैं, जाओ कहना जैसे यहां पर प्रणामी देने की जरूरत नहीं है, आप लोग कोई भी प्रणामी मत देंगे, क्यों 7 दिन हरि कथा सुनिए, और जगह में तो प्रणामी मांगेंगे ना 7 दिन के बाद, नहीं जरूरत नहीं, बस कथा सुनो, नहीं तो बहुत से लोग प्रणामी के डर से आएंगे भी नहीं, इसलिए हरि कथा सुनो। हरि कथा सुनते सुनते ये सब, हरि कथा सुनने से ही चित्त परिवर्तन हो जाएगा, कृष्ण वशीभूत हो जाएगा। तो भगवान की कृपा सर्वत्र है, साधु संग दिया, मंदिरों में ठाकुर जी को उन्होंने विराजमान कराया ना? और इस तरह से सर्वत्र हम लोगों को क्या जरूरत थी इस देश में आने के लिए, क्या जरूरत थी, पैसा तो कमाना उद्देश्य नहीं था, वो तो घर बार छोड़ दिए थे, बहुत ऊंची भी सर्विस भी थी, हम लोगों ने सब छोड़ दिया, किसी कोई कोई बड़े बड़े घराने के लोग छोड़ दिया, इसलिए जरूरत नहीं, केवल इसका ये भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान की कृपा सर्वत्र है, उस कृपा को लेना चाहिए। इसके लिए बतलाया गया है एक मार्जार न्याय एक मरकट न्याय। बंदर होता है, बंदर या बंदरी अपने बच्चों को पकड़ करके नहीं ले जाती, उसके बच्चे पकड़ लेते हैं, जहां भी कहीं उसको पकड़ लिया और वह यहां से वहां तक कूद करके चली जाएगी, जंप कर जाएगी, यदि बच्चा गिर गया तो उस बच्चे को कभी छुएंगी नहीं, उसको छोड़ देगी। तो यहां पर साधक पकड़े भगवान को, और एक दूसरा न्याय है मार्जार बिल्ली, बिल्ली का बच्चा पकड़ता नहीं है, बिल्ली अपने मुख से बच्चे को पकड़ करके और म्याऊ म्याऊ करता है, उसको लेकर के जाती है। तो हमको परिश्रम करने की जरूरत क्या है, हमारी मैया तो भगवान बिल्ली के समान है, वो हमको कृपा करेंगे, हम आराम से हमारी सिद्धि हो जाएगी, वो तो कृपा करने वाले हैं। तो एक तो ये है, रामानुज के आचार्य के संप्रदाय में ऐसा देखा जाता है, दो तरह के। परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, साधु संग दिया और कर रहे हैं, तो वो कृपा करके हमको पार करा देंगे भव सागर से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये दो बातें जो हैं वो ठीक हैं, किंतु एक बात करो, मीमांसा इसकी होनी चाहिए। एक आदमी कुएं में गिर गया, अब निकल नहीं सकता अपने आप, तो ऊपर से एक व्यक्ति ने रस्सी नीचे फेंक दी, कहा जे इस रस्सी को तू पकड़ लो, मैं नीचे ऊपर ले लूंगा, किंतु वह रस्सी पकड़ता नहीं है तो कैसे आएगा। इसलिए रस्सी भगवान की कृपा जो है, नीचे जाना ये तो रस्सी है, भगवान की रस्सी सब समय कृपा है, अब उसको तू पकड़ लो। भागवत में, गीता में, रामायण में, सर्वत्र शास्त्रों में उन्होंने आदेश दिया उसको पकड़ करके, तुम इस संसार से निकल जाओ, ऐ बच्चे को दे दो जिनका है, और तुम मेरी बात सुनो, दे दो जल्दी जल्दी उसको मैया कहे पहुंचाओ, बहुत मुश्किल से आया है यहाँ, मेरी बात सुन। तो जो यशोदा मैया का परिश्रम देखा, बांते बांते थक गई, गोपियां हंस रही हैं, ताली बजा रही हैं, हाँ तो इसलिए भगवान की कृपा है, वही तो बतलाया, उनके आदेश को पालन करके भगवान का नाम संकीर्तन विशेष कर कलयुग में करो, ये भगवान की कृपा को पकड़ना है। तो इसका परिश्रम दे करके भगवान की कृपा होगी, जहां परिश्रम देखा भगवान ने निष्कपट रूप में ये हमारा नाम ले रहा है, हमारे लिए साधन भजन कर रहा है, तो उनका चित्त द्रवित हो जाएगा। जो यशोदा मैया का परिश्रम देखा, कबरी उनकी खुल गई, केश उनका खुल गया, उसमें फूल भी जो पिरोए हुए थे वो नीचे गिर पड़ा, मुक्तम तमा उठा, सोचने लगी ये मेरे गर्भ से ये निकला, ऐसे छोटे से बच्चे को शिशु को मैं बांध नहीं सकती, ये गोपियां हमारे लिए हंसी उड़ाएंगी मेरी, बड़ी लज्जित हो गई, क्या करूं। तो उस समय कृष्ण को देख करके उनको, और उनका चित्त द्रवित हो गया, और जब ही ये कृपा शक्ति आई त्यों ही झट बंध गए। पहले भगवान क्यों नहीं बंध रहे थे, भगवान के बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। तो जिस समय यशोदा मैया ने उपक्रम क्रिया उनको बांधने के लिए, उस समय इनकी इच्छा हुई जी मैया मुझे न बांधती तो अच्छा था, मैया मुझे बांधे नहीं, हमारे सखा लोग मेरे लिए खड़े हैं, खेल नहीं जा रहे, गैया अपना दूध नहीं दे रही, बछड़ों को दूध नहीं पिला रही हैं, और मैं खेल नहीं सकूंगा, इसलिए मैया में बांध देगी तो मैं क्या करूंगा, जा नहीं सकूंगा। इसलिए जही इच्छा हुई जोग माया ने ऐसी की, अपनी शक्ति दिखाई, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक है आश्चर्य, जो कुछ नहीं होने वाला है उसको भी वो कर देगी, तो वो तो जोग माया करा रही है, कमर बढ़ नहीं रही, रस्सी लंबी हो रही है तभी नहीं बंध रहे। और जही यशोदा जी का परिश्रम देखा, उनकी सारी शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है कृपा शक्ति, जहां कृपा उनकी हो गई तहां जोग माया वहां से भग गई, हट गई, और अपने आप उनके केश बांधने वाला जो रेशम की डोरी थी बस उसी से ही उन्होंने बांध दिया, रस्सी इत्यादि की कोई जरूरत नहीं हुई। इसलिए भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, और भगवान की कृपा के ऊपर में निर्भर नहीं कर अपना साधन भी करो, इसलिए भगवान की कृपा हो जाएगी। इस तरह से यशोदा मैया कि शक्ति से नहीं बल्कि भगवान अपने आप बद्ध हो गए, बद गए, कृपया सीत स्वबंधने, कृपा करके अपने आप बंध गए। ऐसा ही सर्वत्र देखा जाता है। तो ये एक उदाहरण है जिसके द्वारा भगवान को भी बांधा जा सकता है। यशोदा मैया ने बांध तो दिया और कृष्ण क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं सबक सबक कर, लंबे लंबे श्वास, गले में बड़ी सुंदर त्रिवली है, पेट में भी त्रिवली है, अद्भुत उनका रोना भी बहुत सुंदर। किस प्रकार से रोते हैं, उनका रोना भी बड़ा सुंदर मनोहर, उनका चलना फिरना देखना सभी कुछ सुंदर। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनका सुंदर ना हो, इसलिए उनका नाम है कृष्णा। कृष आकर्षण करना, कैसे, रूप से, गुण से, लीलाओं से, माधुर्य से, वंशी से, और न आनंद देना, सबको आनंद देने वाले वही हैं। जो यशोदा मैया ने बांध तो दिया और बांध करके बोली ये तू यहीं पर रहो, बांधना क्यों, बांधने का कारण था जो यशोदा जी जानती हैं कि ये बड़ा चंचल है, ढीठ है, ढीठ जानते हैं ना, ढीठ है, यदि इसको बाधा नहीं तो ये अभी क्रोध कर रहा है, कहीं ब्रह्मांड घाट निकट में है वहां पर ना चला जाए, और कहीं यमुना में कूद गया तो ना जाने क्या होगा क्रोध से, या कहीं वन जंगल में चला गया तो ना जाने क्या होगा, इसलिए कहा जाने अभी शांत हो जाएगा, फिर दूध इसे पिलाऊंगी, शांत होने के बाद में छोड़ूंगी, अभी तो इसे बांध देती हूं कि कहीं जा ना सके। ओखल भी बड़ी भार थी, भारी वाली, बांधा। कैसे बांधा, ओखल है, ओखल की तरफ में कृष्ण का पीठ कर दिया और इधर से लेकर के एक गांठ ओखल में दे दी और फिर कृष्ण के उधर में गांठ, जिससे कि कृष्ण उसको पकड़ न सके। इधर से रस्सी लिया, फिर उधर में ओखल है, ओखल में लपेट दी और इसके बाद में जहां पर कृष्ण का हाथ ना पहुंच जाए वहां पर गांठ दे दी पीछे से, और वो गांठ बड़ी जबरदस्त गांठ दे दी, ठीक है यहीं रहो। और इतने में दाम सिदाम मदमंगल इत्यादि सब सखा लोग जुट गए, अब तक तो चुप थे, किंतु जो ही यशोदा माँ वहां से घर में गई काम करने के लिए, उधर में यशोदा जी गई काम करने के लिए, किंतु काम में मन लगेगा, आज बच्चे को बांधा है इसलिए मन तो वही है, तो भी किसी प्रकार से वहां पर इधर उधर कर रही है, किंतु नजर वही धर कृष्ण के ऊपर। उसी समय में सिदाम और मधुमंगल ताली बजा करके हंसने लगे, देखा मैया ने फिर करेगा, फिर करेगा, और उसको रिझाने लगे और वो भी हंसने लगा, ये भी, और जो कज्जल जो लगा हुआ था यहां से वो धीरे धीरे सूख गया, धीरे धीरे सूखने लग गया, किंतु दाग वैसे ही पड़ा है, क्योंकि वो पोंछ तो सकते नहीं, उनकी कमर में रस्सी बंधी है। थोड़ी देर के बाद में वो लोग जब चिढ़ाने लग गए तो कृष्ण को याद आई, क्या याद आई, अरे हमको तो इसमें और कुछ करना है, सर्वज्ञ हैं कृष्ण में दो चीज है, एक ही साथ में वो सर्वज्ञ हैं और दूसरी तरफ में वो मुग्ध भी हैं, कुछ नहीं जानते मानो, और सर्वज्ञता भी उनको अंदर में। याद आई, नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को कृपा करके अभिसंपात दिया था कि तुम लोग वृक्ष की भांति जड़ हो गए, लज्जा तो है नहीं। नारद जी कहीं जा रहे थे, देखा एक सरोवर में नंगे होकर के बहुत सी गंधर्व की स्त्रियों के साथ में ये जल क्रीड़ा कर रहा, वो स्त्रियां तो कपड़े पहन करके आकर के प्रणाम किया और इसने प्रणाम नहीं किया, वो गाली देने लगा, ये कहां से एक साधु आ गया, यहां उधर से रास्ता नहीं था, ये उधर से गया, इधर आ गया मरने के लिए, और उनको भी गाली दे करके बुलाने लगा। नारद जी ने कहा ये तो बड़ा ठीक है, जिनको ऐश्वर्य का मद होता है, धन का मद, जिनको अपने रूप का मद होता है, उच्च कुल में जन्म लेने का और विद्या का मद होता है, ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा नहीं होती। क्या समझा, अच्छी तरह से समझो, जो विद्वान अधिक हो जाएगा वो भगवान को भी नहीं मानता, जिसको रूप का गर्व है और सुंदर या सुंदरी हो गए तो वो किसी को नहीं मानते। और तीसरा, उच्च वंश में किसी का जन्म हुआ है वो भी किसी को नहीं मानता। और सबसे अधिक है धन का मद। धन का मद, एक काला कलूठा व्यक्ति भी जिसको खूब धन हो जाएगा वो बड़े बड़े विद्वानों को अपना नौकर रख लेगा, बड़ी बड़ी सुंदरियों को अपनी नौकरी में बहाल कर देगा। इसलिए सबसे बड़ा धन मद है। इसके पास में सभी कुबेर कैसे धनी के धनी, और लड़के भी बड़े सुंदर उपवान गुणवान सब हैं, किंतु थोड़ा सा मदिरा इत्यादि पी करके इस प्रकार से सब गड़बड़ कर दिया। मदिरा नहीं पान करना कभी जीवन में, धूम्रपान मत करना। इसलिए नारद जी ने कहा जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। उसी समय में वो जड़ वृक्ष होने लगे, उनको अनुभव हुआ तो उनके चरणों में गिर गए। बोले जी महात्मा जी, हमने पहले नहीं समझा, अब आप हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण कैसे होगा। जे ठीक है, तुम हमारे सखा के लड़के हो, मित्र के लड़के हो, जाओ तुम गोकुल में तुम्हारा जन्म होगा जमलार्जुन के रूप में। अर्जुन वृक्ष होता है इंडिया में, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल होते हैं, उनके छाल से कहीं कहीं दर्द हो, कहीं कोई हड्डी फड्डी टूट जाए तो उसको लगाने से वो ठीक हो जाता है। वो जमलार्जुन होकर के एक साथ में दो पेड़ होकर के जन्मे दोनों दोनों भाई। कृष्ण सोचा जी नारद जी ने कहा है जब मैं उनका उद्धार करूंगा तो अब उद्धार करने का अच्छा समय है। बस बच्चों से कहा जी चलो एक खेल खेलेंगे, मैं खींचता हूं तुम लोग पीछे से इसको ठेल करके ले चलो घर के बाहर में जाकर के वहां पर खेलेंगे, हमर मैया आ जाएगी फिर से। इसलिए सब लोगों ने वो सब जितने सखा थे पहले तो खोलने की चेष्टा की, खुली नहीं। बलदेव जी इतने में आ गए, किसने बांधा हमारे भैया को, वो कहीं बाहर गए थे। तो उन्होंने कहा जी किसने बांधा, तो एक सखा ने उनके कान में कहा मैया जसोदा ने, जैया जसोदा का नाम सुनते ही ठंडे पड़ गए, और दूसरा यदि कोई बांधता तो उसको देख लेते। बलदेव जी ने कहा जी मैं खोलूंगा, और सखाओं ने मधुबन ने कहा मैं खोलूं, खुलने खुल नहीं रहा तो उसको हटा करके दूसरा तीसरा चौथा कम किसी से नहीं खुला। कृष्ण का हाथ में नहीं पहुंचा वो भी नहीं खोल सके। जसोदा मैया का बांध कोई दास नहीं खोल सकता, हनुमान जी भी नहीं खोल सकेंगे, शंकर भी नहीं खोल सकेंगे, सीधा मधुमंगल भी नहीं खोल सकेगा, कौन सो खोलेगा। बात्सल्य क्या व्यक्ति नंद बाबा या जसोदा मैया खोलेगी, और कोई नहीं खोल सकता। इसलिए नहीं खुला तब लेकर के चल रहे हैं। जब ही दरवाजा को पार किया वो उसमें अटक गई उनकी ओखल, वो तो पार हो गए, और जो ही दोनों वृक्षों के अंदर में वो ओखल लगी नहीं? तो कृष्ण नहीं छुआ उनको, किंतु कृष्ण से उसकी रस्सी में आया शक्ति, और रस्सी से आई ओखल में शक्ति, और उसके स्पर्श से अपने आप दोनों उखड़ करके जड़ से गिर पड़े। प्रचंड शब्द हुआ, तात्पर्य क्या, जैसे बिजली लोहा हो तांबा हो ये सब धातु हो तो उसके माध्यम से पहुंच जाएगी कहीं भी। एक कोई लोहे के तार पर कपड़े सुखा रहा था और बिजली उसमें पास कर गई, तो जब ही उसने लोहे को वो तार को छुआ बस लटक गया उसी पर। उसकी मैया दौड़ी, उसके भाई दौड़े उसको बचाने के लिए, उसको पकड़ा तो उसमें से बिजली आ गई, वो सब के सब मर करके खत्म हो गए। ऐसे ही कृष्ण की कृपा शक्ति कृष्ण के शरीर से निकल करके रस्सी के माध्यम से वो पहुंच गए, और ओखल के स्पर्श से दोनों पेड़ उखड़ गए। बड़ा प्रचंड शब्द हुआ। नंद बाबा स्नान करने के लिए जा रहे थे, जसोदा मैया का तो मन लग नहीं रहा था, उन्हें ये कहां से क्या हुआ, सब गोपी जहां से तहां से दौड़े, दौड़ करके वहां पर आए, देखा जसोदा जी नारी ये तो मरने से बच गया, कैसे बच गया, पेड़ उखड़ गए हैं, यदि इसके ऊपर में गिर पड़ते इधर में नंद बाबा भी आए, उन्होंने देखा जी क्या हुआ, दौड़ करके गए वहां कृष्ण, कृष्ण आप देख करके अभी तक तो रो नहीं रहा था, किंतु कृष्ण को बाबा को देखते ही एकदम जोर से रोने लग गया। नंद बाबा जी ने अपने पॉकेट से एक लड्डू निकाला और उसको दिया, हाथ में तो ले लिया, खा नहीं रहा और रो रहा है खूब जोर से। उन्होंने पूछा बेटा किसने तुमको बांधा, वो बोलना ही रहा, बार बार वो पूछने लगे, तब अंत में उनके कान में कहा जो और कोई न सुन ले, मैया ने बांधा। अरे मैया, देखा जे दूर पर खड़ी है, शरीर में प्राण नहीं है, मानो लकड़ी की भांति, आज मर गया होता तो क्या होता, बुढ़ापे में एक बेटा पुत्र किसी प्रकार से मिला, आज न जाने क्या होगा क्या होता, सुख करके रो भी, रोना भी सुख गया, एकदम लकड़ी की भांति खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद नंद बाबा जब पूछा, उन्होंने कहा जे मैया, मैया बड़ी निष्ठुर है, तो बांधा किसने, मैया ने, लड्डू किसने दिया, बाबा ने दिया। बस उसको शांत करके और उसके तरफ में तिरछी नजर करके बड़े क्रोध से देखा नंद बाबा ने, आज ये यदि मर गया होता तो, बस गोदी में लिया बलदेव जी को और कृष्ण को कंधे पर चढ़ा लिया और पासी में ब्रह्मांड घाट में गए। तब तक तो दोपहर से अधिक हो गया था, आज घर में रसोई नहीं बनी, कुछ भी नहीं, सभी लोग तो इसी में लगे हुए हैं। नंद बाबा वहां जाकर के स्नान किया, बच्चों को स्नान कराया, उनके कालिख लग गई थी, वो सबको धो धा करके ले आए और गौशाला में गए, घर नहीं गए, और वहीं पर मिश्री अपने मुख से, अपने पॉकेट से निकाल करके दोनों बच्चों को दी और धारोष्ण गायों के थन को ऐसे उसके मुख में भरने लगे, जैसे कि ऐसे धोते हैं उनके मुख में, धारोष्ण इसको कहते हैं, और पेट भर करके उनको दूध पिला दिया मिश्री के साथ। बच्चे खुश हो गए, उनको लेकर के घर आए, तब तक 3-4-5 बज गया था। आज तो रसोई बनाए, कौन बनाए, रोहिणी मैया भी आज इसी में लगी रही, जसोदा मैया तो काट होकर के ठिटकी हुई बैठी हुई है। शाम हो गई, अब लोगों ने देखा जैसे ये तो काम कैसे बने, जितनी घर की बूढ़ी महिलाएं थी, उपानंद नंद बाबा के भैया की पत्नी इत्यादि और रोहिणी मैया, सब मिल करके कृष्ण के पास में गई। बलदेव जी को इशारा किया आज पकड़ लाओ, तो बलदेव जी गए और कृष्ण को ऐसे पकड़ करके ला रहे हैं, तो कृष्ण ने ऐसा झटका दिया कि बलदेव गिर पड़े और दूर से ऐसे देखने लगे। वैसे बलदेव जी और भी बलवान हैं, किंतु उनका बल कुछ काम नहीं किया। तब रोहिणी मैया जी ने पूछा बेटा मैया के पास नहीं जाएगा, तो हूं नहीं जाएगा, कहां रहेगा, पिताजी के पास में, खेलेगा किसके साथ, पिताजी और दाऊ भैया के साथ में, नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, किसी तरह से वो मनाने पर भी नहीं मान रहा। अंत में उन लोगों ने कहा अरे नहीं जाएगा, और मैया यदि ऐसे हो जाए जय सियाराम, तो बस सुनते ही कृष्ण रोने लगे, मैया मैया मैया, हाथ बढ़ा दिया और रोहिणी मैया की गोदी में लपक करके चले गए। रोहिणी मैया जी उनको लेकर जसोदा मैया की गोदी में, अब तक जो रो नहीं रही थी, अब कृष्ण को गोदी में पा करके अब बड़ी डकार करके रोने लगी। कृष्ण भी रोने लगे, नंद बाबा उधर में रोने लगे, सब जितनी ब्रज की स्त्रियां जो आई थी सभी रोने लग गई। यह है ब्रज का प्रेम, रिन्यूअल होता है, जैसे कोई चीज लाइसेंस आपको मिलती है तो रिन्यू करना पड़ता है हर वर्ष में एक बार, तो यह प्रेम का रिन्यूअल है। नहीं होने से कृष्ण ने जानबूझ करके ये किया, क्यों देख रही है, यदि बीच बीच में विपत्तियां नहीं आए तो कृष्ण को अधिक प्यार नहीं करेंगी, और कृष्ण सब समय प्यार के भूखे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। एक समय की बात है अब और इतिदृक स्वभी लीलावीर आनंद कुंडे सखो सम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तविजितत्वम् पुनः प्रेम तत्त्वान् सदा प्रीति वंदे इतिदृक स्वलीलावीर आनंद कुंडे। कृष्ण इसी प्रकार से गोकुल में ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं तरह तरह की। आनंद सिंधु में सभी लोग वहां के ब्रजवासी लोग डूब रहे हैं, नई नई रोज ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कैसी लीलाएं करते हैं, एक का नमूना थोड़ा सा देखिए। एक वृंदावन की कुंजड़िन थी, कुंजड़िन जानते हैं, कुंजड़ा कुंजड़ी, तुरहा तुरही, फल बेचने वाली, फल बिक रहे नहीं, फल बेचने वाली, बहुत से फलों को लेकर के आम अमरूद केले बढ़हर और सब नींबू तरह तरह के फल लेकर के रसी ले और वो जाती थी फल बेचने के लिए। उसने दूसरी लोगों से सुना कि गोकुल में जाओ तुम्हारा फल बहुत जल्दी बिक्री हो जाएगा, और वहां पर एक नंद बाबा का लड़का हुआ है, अद्भुत सुंदर, अद्भुत सुंदर, उसको दर्शन कराया। सोचा जी अच्छा, एक दिन वो गई दर्शन के लिए, किंतु चारों तरफ में वो फल बेचने के इससे गई, किंतु उस समय कृष्ण सो रहे थे, दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, चौथे दिन दर्शन मिल नहीं रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते, बतलाया ना साधन होना चाहिए, तो इसका साधन क्या था, सुना था केवल, किंतु सुनते सुनते इसके अंदर में ऐसी हो गई कि जरूर इनका दर्शन हम करेंगे इस बच्चे का। आज वो फल लेकर के फल लो कर रही है, और ऐसे फल में मत हो गई कहने में, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, फल लो नहीं, गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो, इस प्रकार से एकदम प्रमत्त हो गई, भूल गई, यहां तक कि अपना हाथ भी रखना भूल गई, फल गिर गया या क्या हो गया ये भी उसको पता नहीं, घूमती रही। आज तो दर्शन करके ही जाऊंगी, शाम हो जाए सवेरे आज दर्शन किए बिना लौटूंगी नहीं। इसलिए नंद बाबा के दरवाजे पर अपना उसने टोकरी रख दी फलों की, और रख करके फल लो गोविंद दामो धर्माधवेती, एकदम तन्मय हो गई, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। कृष्ण रूप हिरण को पकड़ने के लिए ये एक जादू है, जादू का डंडा कृतर, जिनमें कृष्ण का नाम जरूर सुनेंगे तो जरूर आ जाएंगे। इसे जब वो कीर्तन करने लगी तो कृष्ण से रहा नहीं गया, मैया की गोदी से उठे, और वहां पर गेहूं की राशि पड़ी हुई थी, एक अंजलि गेहूं उठाया, छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे छोटी छोटी गईयां, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटी सी लकुटी, और छोटी छोटी बाहें हाथ उनके भी, और छोटे सही छोटे छोटे ये गोपाल जी चरा रहे हैं तो उनके छोटे छोटे हाथ लिए, अभी अभी अढ़ाई वर्ष के होंगे, उन्होंने उठाया और उसके सब तरह से जितने गेहूं के दाने थे सब गिर गए, केवल यहां पर दो एक दाना लगा होगा गया, और उन्होंने सोचा जैसे ये तो हमारी अंगुली में ही, सब हाथों में ही है। गए उसके यहां तुड़ही जहां पर थी कुंजड़ीन फल बिक रहे नहीं, बोले जे फल दो फल दो। वो देखते ही रह गई कृष्ण को, शुद्ध बुद्ध भूल गई अपनी, उनके रूप उस बालक को देख करके। थोड़ी देर के बाद में होश आया, बोली मैं फल तो दूंगी तो लो ये जो एक दो दाना होगा उसमें फेंक दिया, कहा जी फल दो। फल ऐसे नहीं, तुम हमको यदि एक बार मैया कह देगा और हमारी गोदी में बैठ जाएगा तो देंगे, ऐसे नहीं देंगे। वो भी कम नहीं थी। कृष्ण ने देखा जी मैया देख रही है कि नहीं, कि और कोई देख रहा है कि नहीं, इसकी गोदी में हम बैठेंगे, नीच जाति की है, बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए बैठ नहीं रहे। इधर उधर पहले देख लिया, देखा जी तो कोई तो है नहीं, बड़ा अच्छा सुयोग है। झट एक मिनट के अंदर में उसकी गोदी में बैठ गए और बोले जी मैया, और इसके बाद में खड़े हो गए, फल दो फल दो। किंतु गोदी में तो बैठ ही गए और मैया एक बात कह दिया न। कृष्ण जिसको मैया कह देंगे वो साधारण अब रही, उसका तो उस सब कुछ हो गया, मिल गया जिसके लिए वो आई थी। उसने जितने उसके सुंदर सुंदर फल थे उस हथेली में कितनी आएगी, एक केला देने से ही तो भर जाएगा। तो उन्होंने ऐसे किया, अब हाथ ऐसे नहीं करके इसमें लगा दिया जिससे कि अधिक फल आए। तो उन्होंने उसमें सुंदर सुंदर आम, मधुर मधुर केले, अमरूद, दो एक जो कुछ होगा उसने दे दिया। अंजलि वैसी बड़ी जैसे वो बहुत काफी वो ले लिए, और ले करके थे थे नाचते हुए नंग अभी धड़ंग तो ही है मैया की गोदी में जाकर के, और उनकी मैया की आंचल में दे दिया। आंचल देना, अरे कहां से लाया तू? तो कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, कहां से लाया। खैर उसको बांटने लगी तो इतना वो बटा, हजारों गोपियों को देने पर भी वो शेष नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, सबका सबको उन्होंने दे दिया, जितना जो चाहे, किंतु कम नहीं हुआ। कृष्ण का दिया हुआ कोई भी चीज कम नहीं होता। तो उन्होंने तो सब बांट दिया, तभी नहीं हुआ। उस समय में अब तो कृष्ण खेलने लगे इधर, अब सुरहिन का उस फल विक्रणी का क्या हुआ, वो बैठे की बैठे रह गई, उसे याद नहीं रही ये कहां पर कौन बैठा है, बैठी की बैठे। कुछ देर के बाद में कोई ब्रजवासी आया या आई, अरे यहां पर तू कब से बैठी हुई, क्यों बैठी हुई है। तब उसे याद आया, उसने अपने टोकरी को सिर पर उठाया, चलने लगी। जब जमुना के किनारे गोकुल से मथुरा आने में जमुना को पार करना होता है, तो जब जमुना को पार करने लगी तो वहां पर देखा जी हाँ उसके उसकी टोकरी कुछ भारी सी है। भारी क्यों, फल तो मैंने सभी दे दिया, तो ये भारी क्यों। नीचे निचार करके देखा उसमें जवाहरात, हीरे और क्या क्या सब भरे पड़े हैं, असंख्य मणियों से भरा पड़ा है। देखकर कहा अब इसकी क्या मुझे जरूरत। उसको लेकर के जमुना में लेकर के टोकरी समेत फेंक दी और बावरी होकर के कृष्ण के प्रेम में अब कहां गई किसी ने नहीं देखा, घर नहीं लौटी। पति रो रहे हैं, उसके बच्चे रो रहे हैं, घर नहीं लौटी। अब बतलाओ कहां गई होगी, कृष्ण प्रेम में सबको छोड़कर के दीवानी बन गई, प्रेम की दीवानी। मीरा कहां गई, ऐसे ही हम लोग अपने घर से कैसे निकल करके कहां चले गए। पिता माता को एक दो वर्ष चार वर्ष तक पता ही नहीं कि कहां गए। इस तरह से वो कुंजड़िन घर से निकल करके जो गई, कृष्ण प्रेम में मत्त हो गई, शरीर को छोड़ दिया और अपनी आत्मा से भगवान की मैया बन करके वृंदावन में पहुंच गई। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री। बस आज यहीं तक समाप्त हमारी कथा। फिर अगले वर्ष यदि आया तो इसकी बात की कहानियां सुनाऊंगा, भागवत की बड़ी रसीली। आप लोग ऐसे कृष्ण का भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर दें, यानी महामंत्र।
Thus ends the class on the 2nd of February in the evening in Auckland, New Zealand, 2002. Hare Krishna.